नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभासपाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभासपाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमरीका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।